नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। इन हमलों में 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। एक रिपोर्ट।
ऑपरेशन सिंदूर भारत के सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आतंकवाद और उसको समर्थन देने वालों को समाप्त करने के अपने संकल्प पर अडिग है। ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने इस ऑपरेशन के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई ने सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछले सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री के पद की शपथ लेने की संभावना है। केरलम के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता के चयन के लिए बैठक करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 104 सीटें जीती हैं। यूडीएफ नेता राज्यपाल के तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद उनसे भी मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 14 बिंदुओं वाला ये मसौदा 30 दिन की बातचीत का रास्ता खोल सकता है, ताकि एक व्यापक समझौते तक पहुंचा जा सके। ईरान ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति को नियंत्रण में बताया, लेकिन चेतावनी दी कि बातचीत असफल होने पर सैन्य कार्रवाई फिर शुरू हो सकती है। फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। एक बयान में फ्रांसीसी सेना ने कहा कि चार्ल्स डी गॉल विमानवाहक पोत समूह, जिसके साथ एक इतावली और एक डच युद्धपोत भी है, दक्षिणी लाल सागर की ओर अग्रसर है। दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।